आशिका वॉशिंगटन पहुंच गई थी और वहां जाते ही उसे सबसे पहले अपनी अथॉरिटी को रिपोर्ट करना था। आशिका को थोड़ी देर पहले गर्व से ही पता चला था कि उसे काफी दिनों से हेल्प के लिए कॉन्टैक्ट किया जा रहा है। वो लोग इस बारे में रिहान से पहले ही बात कर चुके थे और साथ ही उसे स्थिति की गंभीरता के बारे में भी पता था। उसके बावजूद रिहान ने आशिका की पर्सनल लाइफ को देखते हुए उसे कुछ नहीं बताया। आशिका की इस बेपरवाही की वजह से अथॉरिटी उससे पहले से ही नाराज थी। आशिका हर एक नतीजे को भुगतने के लिए तैयार थी, लेकिन जैसा कि पहले गर्व ने कहा कि अगर एजेंसी टीम ने उसे पहले ढूंढ लिया तो उसे हमेशा के लिए उनके लिए काम करना पड़ेगा। ये आशिका कभी नहीं करने वाली थी। ऑफिस पहुंचने के कुछ ही मिनट में आशिका अथॉरिटी टीम के सामने खड़ी थी। वहां पहुंचते ही गर्व ने सबसे पहले सल्यूट किया, जबकि आशिका ने उनके सम्मान में हल्का सा सर झुका दिया था। अथॉरिटी हेड कैप्टन विराज ने आशिका की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, तुम्हें कोड रेड का मतलब पता है ना आयश, और ये सिचुएशन पिछले 20 दिनों से बनी हुई है। वो एक इंडो अमेरिकन 40 साल का आदमी था। आई एम रियली सॉरी, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अब तक आ चुकी होती, आशिका ने अपनी सफाई में धीमी आवाज़ में कहा। मुझे एक्सक्यूज़ सुनना पसंद नहीं है। पिछले 20 दिनों में जितना नुकसान हुआ है, क्या तुम उसे जल्द से जल्द ठीक कर पाओगी? विराज ने आशिका की आंखों में आंखें डालकर पूछा। उसके चेहरे के भाव बिल्कुल सधे हुए थे। आई विल ट्राई माई बेस्ट, आशिका ने जवाब दिया। बट आई वॉन्ट रिजल्ट, विराज बोला। आशिका ने हल्के से सिर हिला दिया था। आशिका से बात करने के बाद विराज ने गर्व की तरफ देखा और कहा, तो तुमने आयश को ढूंढा? आई होप कि इसके मैनेजर से हमारी जो डील हुई थी वो इसे पता होगी। वो लोग किस डील की बात कर रहे थे आशिका अच्छे से समझ गई थी। कैप्टन विराज काफी सख्त थे और उनके सामने किसी तरह का पक्ष रखना पूरी तरह बेकार था। अगर आशिका उनके सामने सच भी बताती कि रिहान ने उसे कॉन्टैक्ट नहीं किया था, तब भी वो उस पर यकीन नहीं करते। आशिका ने गर्व की तरफ देखा। उसे एक पल में उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अगर उसे हमेशा के लिए वहां काम करने के लिए कहा गया तो आशिका के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, और ऐसी स्थिति में वो कभी अभिमान को जिंदगी भर नहीं देख पाती। गर्व ने गहरी सांस ली। वो जवाब में बोला, नहीं सर, ऐश ने हमें हेल्प के लिए कॉन्टैक्ट किया था। वो हमारे पास ही आ रही थी, पर बीच में उसे किसी माफिया ने किडनैप कर लिया था, और इसके पीछे पूरी तरह उसकी पर्सनल लाइफ इन्वॉल्व है। बोलते हुए गर्व एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाया, और ना ही उसने विराज के साथ आई कॉन्टैक्ट करना छोड़ा। अगर वो ऐसा करता तो विराज को उसे पकड़ के एक मिनट नहीं लगती कि वो झूठ बोल रहा है। विराज ने हाँ में सिर हिलाया और फिर आशिका की तरफ देखकर पूछा, डू यू नीड एनी हेल्प इन दिस रिगार्ड? नो थैंक्स सर, आशिका ने उसे तुरंत मना कर दिया था। बातचीत को ज्यादा ना बढ़ाते हुए आशिका ने सीधे सीधे कहा, मैं अपनी टेक लैब में जाना चाहती हूँ और ऑलरेडी मैंने 20 डेज लेट कर दिया है। चलो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही काफी है, यू कैन गो नाउ, विराज बोला। आशिका ने राहत की सांस ली। उसे सच में गर्व से किसी तरह की मदद की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि गर्व फुल टाइम एजेंसी के लिए काम करता था और वो दोनों तभी मिल पाते थे जब आशिका यहाँ पर आती थी। एक पल के लिए आशिका को यही लगा कि गर्व शायद इस बार सेल्फिश हो जाएगा, क्योंकि उसने पहले आशिका के सामने अपने दिल की बात कही थी कि वो उसे पसंद करता है। आशिका दूसरी तरफ पलटी ही थी कि तभी विराज ने कहा, तुम खुद हमारी हेल्प के लिए चल कर आए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे लेट आने की वजह से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, सो बी रेडी फॉर पनिशमेंट टू। आशिका ने अपनी मुठ्ठियां बांध ली थी। उसके पास विराज की तरफ पलटकर हल्के से सिर हिलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो गर्व के साथ अपनी टेक लैब में जाने लगी। आशिका इस वक्त जिस जगह पर मौजूद थी वो कोई मामूली जगह नहीं थी। उस जगह पर अमेरिका और उनसे जुड़ी आसपास के देशों की सिक्योरिटी से जुड़ा डेटा मौजूद था। वो जगह सिक्योरिटी के मामले में काफी ज्यादा एडवांस थी। हर एक इंसान की हर मोमेंट पर टीम की नजर रहती थी, और वहां से बिना टीम की परमिशन के किसी तरह के सीक्रेट मैसेज को भेज पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। आशिका विराज के ऑफिस से बाहर निकली और गर्व के साथ अपनी टेक लैब में जाने के लिए लिफ्ट में आ गई थी। मैंने सोचा नहीं था तुम मेरी हेल्प करोगी, आशिका ने बेहद धीमी आवाज में कहा। मैंने पिछले 2 दिनों में तुम्हारी दूसरी बार हेल्प की है और फिर भी तुम मुझ पर शक कर रही हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ मेरे साथ हमेशा के लिए काम करो, ताकि आज नहीं तो कल तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी फीलिंग्स ग्रो हो। पर न जाने क्यों कैप्टन किसान ने तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे तुम पर दया आ गई, वरना मेरा पूरा प्लान था कि मैं उन्हें यही कहूंगा कि मैंने तुम्हें ढूंढा है, गर्व ने सीधे सीधे कहा। वैसे भी वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान था। ना तो गर्व ने अपनी फीलिंग्स कभी आशिका से छुपाई थी और ना ही अपने दूसरे को इरादे। आशिका ने उसकी बात पर हामी भरी और जवाब में इतना ही कहा, मुझे तुम्हारी यही क्वालिटी सबसे ज्यादा पसंद है कि तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और कुछ भी कहने से पहले सोचते नहीं हो। जैसे ही आशिका की बात खत्म हुई, गर्व आंखें फाड़कर उसकी तरफ देखने लगा। यह पहली बार था जब उसने अपने मुंह से सीधे उसकी तारीफ की थी। हालांकि आशिका बात गर्व से कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में अभिमान चल रहा था, जो खुद ठीक से आशिका को अपने दिल की फीलिंग्स नहीं बता पाया था। आशिका अपनी लैब में आ गई थी। वहां सिर्फ वही नहीं, उसी की तरह और भी हैकर्स मौजूद थे।
बस ये बात अलग थी कि आशिका उन सबको लीड करती थी और उसके बिना वो लोग अकेले चीजें नहीं संभाल पा रहे थे। वहां आते ही आशिका ने अपना काम संभाल लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ आशिका को गए हुए पूरे 2 दिन हो गए थे। अभिमान इस वक्त अपने ऑफिस में रचित और राघव के साथ मौजूद था। जो भी हुआ उसने उन दोनों को बता दिया था। वो आशिका के जाने के बाद आज ही ऑफिस आया था। अभिमान का चेहरा उतरा हुआ था। उसकी आंखें देखकर कोई भी कह सकता था कि वो ठीक से सोया तक नहीं है। अभिमान ने रचित की तरफ देखा और बुझी हुई आवाज में पूछा, मैंने तुम्हें रेहान से कॉन्टैक्ट करने को कहा था, क्या तुम्हारा उससे कॉन्टैक्ट हो पाया? उसी में लगा हूँ, पता नहीं क्यों अचानक से उसने अपने सारे पुराने कॉन्टैक्ट नंबर्स और आईडीज वगैरह चेंज कर लिए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो दुनिया के किसी ऐसे कोने में जाकर बैठ गया है जहां वो खुद नहीं चाहता कि कोई उसे ढूंढ पाए, रचित ने हल्के अंदाज में कहा। वो अभी भी रेहान की पुरानी आईडीज को खंगाल रहा था। रचित ने यह बात मजाक में कही थी, पर सच तो यही था। जब से गर्व और एजेंसी टीम ने रेहान को आशिका को एजेंसी टीम में भेजने और उनसे कॉन्टैक्ट करने का कहा था, तब से रेहान ने अपने सारे कॉन्टैक्ट करने के जरिए ही खत्म कर दिए थे ताकि टीम उसे फोर्स न कर सके। रचित अपने काम में लगा हुआ था जबकि राघव ने अभिमान की तरफ देखा। वो बोला, तुम्हें थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए और साथ ही कुछ खा लो। फिलहाल हमारे लिए इतना काफी है कि वो तुम्हारे डैड के पास नहीं है। लेकिन मिस्टर राजवंश भी तो गायब है, पता नहीं वो मुझसे पूछने क्यों नहीं आए कि आशिका कहाँ है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो जानते हैं कि आशिका कहाँ है, अभिमान बोला। तब तो हमें उन्हें भी ढूंढना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि वो हमारी हेल्प करेंगे, रचित ने सुझाव देते हुए कहा।
अभिमान बिल्कुल चुप हो गया था और उसने अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लिया था। पिछले 2 दिनों से वो पागलों की तरह हर एक चीज को खंगाल रहा था, हर उस छोटे जरिए को ढूंढ रहा था जिससे वो आशिका के बारे में पता लगा सके, पर उसे हर बार निराशा ही हाथ लगी थी। सिर्फ अभिमान ही नहीं, अभिमन्यु का भी यही हाल था। तृप्ति अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं थी, ऊपर से वो सच में आशिका के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। उल्टा उसे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया था कि आशिका आकाश के पास से भाग चुकी है। इस वक्त पृथ्वी और अभिमन्यु दोनों ही तृप्ति के सामने खड़े हुए थे और पृथ्वी ने पिछले 2 दिनों में उससे सच जानने के लिए उसे हर तरीके से टॉर्चर किया था। तुम लोग मुझे कितना भी मार पीट लो या कितनी भी धमकी दे दो, लेकिन मुझे कैसे पता हो सकता है वो लड़की कहाँ है? मैं तो तुम लोगों के पास हूँ, तृप्ति ने धीमी आवाज में कहा। उसका सर नीचे की तरफ था। पृथ्वी ने एक नज़र तृप्ति की तरफ देखा और फिर अभिमन्यु को बाहर आने का इशारा किया। बाहर आते ही पृथ्वी ने सिर हिलाकर कहा, मुझे लगता है वो झूठ नहीं बोल रही है। ऊपर से जिस प्राइवेट जेट को मिस्टर आकाश राजवंश ने हायर किया था उसके पायलट ने यही बताया था कि उन पर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का हमला हुआ था। लेकिन आशिका का डिफेंस से क्या लेना देना हो सकता है? आखिर वो उसकी हेल्प करने क्यों आएंगे? अभिमन्यु हैरानी भरे लहजे में बोला। हो सकता है वो आशिका के बजाय आकाश राजवंश के लिए आए हों। भले ही बाकी लोगों को ना पता हो, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि वो क्या करता है। एक माफिया के ऊपर फोर्स का हमला होना कोई बड़ी बात नहीं है। पायलट्स कॉकपिट में थे, उन्हें नहीं पता बाहर क्या हुआ था। उन्होंने बस आखिरी बार आकाश राजवंश को वहां से पैराशूट से भागते और आशिका को उन्हें अपने साथ ले जाते हुए देखा था, पृथ्वी ने बताया। आई होप कि सब सही हो और वो आशिका को आकाश राजवंश का साथी न समझ लें, अभिमन्यु परेशान स्वर में बोला। एक बार भी उनके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि आशिका किसी स्पेशल फोर्स के लिए काम कर सकती है। उन्हें भी लग रहा था कि अगर आशिका को ले जाया गया है तो उसके पीछे की वजह आकाश है। एक देर की खामोशी के बाद अभिमन्यु ने पृथ्वी की तरफ देखकर पूछा, और वो लड़की सेलिना कहाँ है जो तृप्ति की स्टेप डॉटर है? हम होटल गए थे पर वो वहां नहीं मिली और उसका नंबर भी बंद आ रहा है। अजीब बात है, वो लड़की यहाँ किसी को नहीं जानती लेकिन फिर भी अब तक छुपना मैनेज कर पा रही है, पृथ्वी ने जवाब दिया। जब तृप्ति उस दिन होटल नहीं पहुंची थी तब सेलिना ने उसे कॉल किया था। पृथ्वी ने कॉल रिसीव किया और सेलिना को अपनी बातों में बहकाने की पूरी कोशिश की। वो सेलिना को लाने के लिए भी गया था लेकिन तृप्ति का कॉल किसी और ने रिसीव करते ही सेलिना समझ गई थी कि वो मुसीबत में फंस गई है। मौके का फायदा उठाकर सेलिना वहां से चली गई थी और वो कहाँ थी इस बारे में कोई नहीं जानता था। वहीं दूसरी तरफ अभिमान रात के 11 बजे के करीब घर लौट आया था। आज उसका पूरा दिन फिर से निराशा में बीत गया था क्योंकि ना तो रेहान से कॉन्टैक्ट हो रहा था और ना ही आशिका के बारे में कुछ पता चला था। हमेशा की तरह आते ही अभिमान सीधा कमरे में जाने लगा, पर जाने से पहले उसने एक नज़र निशा के कमरे की तरफ देखा जो उस दिन के बाद से उसके सामने नहीं आई थी। अफसोस कि मैं आपको नहीं छोड़ सकता, अभिमान ने खुद से बड़बड़ाकर कहा। उसे निशा की तबीयत की फिक्र सताने लगी। बस यही सोचकर अभिमान ने अपने कदम निशा के कमरे की तरफ बढ़ा दिए थे। उसने देखा कमरे की लाइट ऑन थी। निशा बिस्तर पर घुटनों में सिर रखकर बैठी हुई थी। हाँ, उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो पिछले दिनों से दवाइयां सही टाइम पर ले रही थी और बीमार भी नहीं थी, पर चेहरे पर गहरी मायूसी के भाव थे। किसी के आने की आहट सुनकर निशा ने सिर उठाकर अभिमान की तरफ देखा, लेकिन अभिमान से कुछ कहने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाई।
अभिमान के लिए निशा को देखना भर काफी था और वो वापस अपने कमरे में आ गया था। रूम में आते ही अभिमान ने अपना मोबाइल निकाला और अचानक उसके मोबाइल पर एक अजीब सा मैसेज आया जो कोड लैंग्वेज में होने की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा था। आशिका, ये मैसेज आशिका ने भेजा है। उस मैसेज को देखते ही अभिमान समझ गया था कि ये कौन भेज सकता है और उसने तुरंत उसे पढ़ने के लिए रचित को फॉरवर्ड कर दिया था। आशिका के एक मैसेज के साथ ही अभिमान को इस बात की राहत थी कि अगर वो मैसेज भेज पा रही है तो सुरक्षित है और साथ ही जल्द ही वो एक दूसरे के पास आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आशिका इस वक्त टेक लैब में अकेली थी। रात को ब्रेक टाइम होने पर वो बाहर जाने के बजाय अभिमान को मैसेज भेजना मैनेज कर रही थी। आई होप कि उसे मेरा मैसेज मिल गया होगा और साथ ही ये भी समझ आ गया होगा कि उसे अब मेरा इंतजार नहीं करना चाहिए, आशिका ने मन ही मन कहा और स्क्रीन की तरफ देखा। उसने कुछ ही सेकंड में एक ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट किया था जिससे वो इस तरह का एक भी मैसेज भेजना पॉसिबल कर सके। इतनी सिक्योरिटी के बीच रहकर अभिमान को मैसेज भेजना सच में उसके लिए मुश्किल था और उसके पास ज्यादा टाइम भी नहीं था। मैसेज जैसे ही रिसीव हुआ, आशिका ने उस सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। चलो बेचारे अभिमान को कुछ तो राहत मिली। वैसे क्या हमेशा के लिए आशिका एजेंसी में फंसकर रह जाएगी या कभी अभिमान के पास जा भी पाएगी? चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। कहानी यहाँ से थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड होने वाली है ताकि आपको इन दोनों को ज्यादा दिनों तक अलग न देखना पड़े।